नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं सापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपम् सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधुर्जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदा वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे। कल हमने लीला को थोड़ा ही आगे बढ़ाया क्योंकि हम लीला उस प्रसंग तक लाए थे जब वात्सल्य प्रेम पूर्ण प्रकार से विकसित हो रहा था माता यशोदा और श्री भगवान कृष्ण इनका जो आदान प्रदान वात्सल्य रस का स्तनपान कर रहे हैं भगवान माता यशोदा अपने दिव्य कृष्ण प्रेम को अपने स्तनों के दूध के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पिला रही हैं और भगवान श्री कृष्ण जो कि स्वयं असीमित हैं पूर्ण पुरुषोत्तम हैं वो जब माता यशोदा का असीमित प्रेम पी रहे थे दूध के द्वारा, तो वो असीमित काल तक चल रहा था मानो। और बहुत हमारे टीकाकारों ने इसके विषय में उत्प्रेक्षा की है कि माता यशोदा का सौभाग्य उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। और श्रील प्रभुपाद जी वो अपने एक प्रवचन में बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति माता यशोदा का पद भी प्राप्त करने की इच्छा करता है तो बहुत बड़ा पाप कर रहा है, ये मायावाद के समान है। हमें माता यशोदा के पद चिन्हों पर चलना है, और जिस प्रकार से उन्होंने भगवत सेवा की उस प्रकार की सेवा, उस प्रकार की धारणा हमारे अंदर होनी चाहिए भगवान को प्रसन्न करने की। क्योंकि माता यशोदा उनका एकमात्र उद्देश्य हर क्षण हर दिन यही रहता कि कैसे कृष्ण प्रसन्न रहें, और कोई उद्देश्य नहीं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बहुत से श्लोकों में वो केवल माता यशोदा का ही गुणगान कर रहे हैं। किमुतः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किमनु रक्तस्तन मातरो यथा, कि उन माता का क्या कहना जो कि स्नेहवश प्रेमवश वो भगवान श्री कृष्ण को हर क्षण उनकी सुरक्षा के लिए ही अपना जीवन दे रही हैं। तो क्यों नहीं भगवान श्री कृष्ण अपना सर्वस्व ऐसे माता को दे देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण अब मानो जब स्तनपान कर रहे हैं माता यशोदा का, तो पूरी सृष्टि को भूल चुके हैं वो। अब भगवान जो कि परमात्मा स्वरूप में सभी के हृदयों में हैं, वो भगवान एक क्षण भी व्यक्तियों के कर्मों को, उनकी इच्छाओं को, धारणाओं को भूलते नहीं। परमात्मा जो है हमारे हृदय में, उनका ये विशेष गुण है कि वो सबका रिकॉर्ड रखे हैं, कि इस पूरी सृष्टि में हरेक जीवात्मा ने क्या सोचा है, अब तक क्या सोचा है, अब क्या सोच रहा है, आगे क्या सोचेगा, अब तक क्या किया है, अब क्या कर रहा है, आगे क्या करेगा, ये पूरा रिकॉर्ड भगवान परमात्मा रखे हैं सबका। और सुखदेव गोस्वामी यहां पर कहते हैं कृष्णाय परमात्मने, कि ये जो परमात्मा है ये केवल विस्तारित स्वरूप है भगवान का। इस भौतिक संसार में, आध्यात्मिक संसार में, गोलोक वृंदावन धाम में परमात्मा की कोई आवश्यकता नहीं है वहां पर, क्योंकि वहां पर कोई रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं कि कौन कैसे कर्मों में लगा है, क्योंकि वहां पर भगवान स्वयं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं वो रिकॉर्ड रख रहे हैं सबकी भक्ति का, और वो भी नहीं रख पा रहे। जैसे कि परमात्मा इन संसार में मानो कि हमारे पापों का रिकॉर्ड यदि नहीं रख पाए, क्योंकि इतने पाप लोग कर रहे हैं, तो इसके ठीक विपरीत स्वयं भगवान आध्यात्मिक संसार में भक्तों की भक्ति का रिकॉर्ड नहीं रख पा रहे, क्योंकि अनगिनत तरीके से भक्ति कर रहे हैं इनके भक्त वहां पर। इसलिए वहां पर भगवान निश्चिंत रहते हैं। निश्चिंत इसलिए कि उनके विस्तारित स्वरूप परमात्मा सब कुछ कर रहे हैं इस भौतिक संसार में, तो उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि यहां का मैनेजमेंट कौन संभाल रहा है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इसलिए भी हैं कि उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब इस भौतिक संसार में यदि कोई व्यक्ति कुछ न करे तो उसे निठल्ला कहते हैं, सही शब्द है निठल्ला कहीं का, ऐसा कहते हैं जो कुछ नहीं करता उसे निठल्ला कहते हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भगवान श्री कृष्ण उनके लिए भी कोई कार्य नहीं करने योग्य, कुछ नहीं उनके करने योग्य, क्योंकि एक तो इस भौतिक संसार या कोई भी संसार का कोई भी कार्य हम लें तो वो भगवान के योग्यता तक पहुंच ही नहीं सकता। और इसलिए जर्मनी का एक बहुत बड़ा स्कॉलर, बहुत विद्वान व्यक्ति, उसने सुना भारत के विषय में कि भारत में अलग अलग प्रकार के ईश्वर हैं, देवता हैं, और अलग अलग प्रकार से इनकी आराधनाएं होती हैं भारत में। तो इस जर्मन व्यक्ति को कहा गया कि यदि भगवान को देखना है या अलग अलग प्रकार के भगवानों के अंशों या अवतारों में से कौन भगवान है परखना है तो भारत में जाना होगा। तो ये व्यक्ति भारत में आता है और अलग अलग तीर्थ स्थानों में, मंदिरों में जाता है और देखता है कि कहीं पर माता दुर्गा राक्षसों का वध करने में लगी हैं, कहीं पर ब्रह्मा जी वो सृष्टि निर्माण करने में लगे हैं, यहां तक कि शिव जी ध्यान में लगे हुए हैं। तो अलग अलग देवी देवताओं के अर्च विग्रह, तीर्थ स्थान उनके मंदिरों में भ्रमण कर कर उसने देख लिया, परंतु निष्कर्ष यही निकाला कि ये सब पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं हो सकते, ईश्वर हैं परंतु परमेश्वर नहीं हो सकते, क्योंकि यदि इन्हें कुछ कार्य करना पड़ रहा है, किसी को मारना पड़ रहा है, ध्यान में हैं या सृष्टि कर रहे हैं, तो कुछ करना पड़ रहा है तो इसका अर्थ है कि इन्हें कोई ये कार्य करा रहा है, इनके ऊपर भी कोई है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी एक कथा सुनाया करते थे कि गांव का एक व्यक्ति, वो सोचा कि मुझे किसी की सेवा करनी चाहिए, गांव में जो प्रमुख है उसकी सेवा करूंगा तो कुछ अच्छा फल प्राप्त होगा। तो सेवा हेतु वो जो गांव का मुखिया था वहां पर गया, तो गांव के मुखिया को पूछा कि मैंने सुना है कि आप मुख्य हैं यहां के। तो मुखिया ने कहा हां मैं मुख्य हूं, तो मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। तो ठीक है, सेवा में लगा दिया। अब सेवा में लग गए तो देखा कि हर महीने ये मुखिया जी सारे गांव के कागजात लेकर गांव के बाहर कहीं पर जाते। तो इस व्यक्ति ने मुखिया से पूछा कि हर महीने आप 2-3 दिन के लिए कहां गायब हो जाते। तो उसने कहा अरे भाई, जो भी यहां का कारभार है वो सब की रपट दिखानी पड़ती है, हमारे जो मंत्री हैं उनको, कौन है मंत्री, कौन है ये, क्या होता है। तो मुखिया ने कहा अरे मंत्री मुझसे बड़ा, जो कि सब कुछ देखता है इस गांव का, और केवल इस गांव का नहीं, ये पूरे राज्य के जितने भी गांव हैं उन सब का कार्यभार वो जाकर देखते हैं। तो ये व्यक्ति, अरे 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 मुझे तो लगा कि आप मुखिया हैं, आपसे भी ऊपर कोई है। तो वो गए मंत्री के पास, और मंत्री के पास गए और वहां पर मंत्री की सेवा प्रारंभ कर दी। अब मंत्री जी की सेवा प्रारंभ की तो मंत्री जी भी हर हफ्ते सारे गांवों का रिपोर्ट लेकर जाते हैं बादशाह अकबर के पास। सो बादशाह अकबर के पास सारी रिपोर्ट, तो अब समझ में आया कि मंत्री भी मुख्य नहीं, ये मंत्री के भी ऊपर कोई है। तो अकबर के पास गए अकबर की सेवा और पूछा कि इस राज्य में आपसे बड़ा कोई है? तो अकबर ने कहा नहीं। हाँ ठीक है, तो आपकी सेवा। तो अकबर की सेवा में लग गया और एक दिन देखा कि अकबर बादशाह भी अपने महल में आने से पहले नमाज पढ़ने जा रहे हैं। तब पूछा कि ये कौन से कमरे में जाकर आपने क्या आसन वगैरह लगाकर ये हाथ एक भिखारी के तरह आगे कर क्या कर रहे थे? तो बादशाह अकबर कहते अरे हम सब भिखारी हैं उस अल्लाह के सामने, ये कौन है? अरे ये परवदिगार अल्लाह परमेश्वर तुम्हारी भाषा में, इनके सामने हम सब भिखारी। तो ये व्यक्ति ने सोचा कि भाई अकबर भी भिखारी, मंत्री भी भिखारी, मुखिया भी भिखारी, मैं तो हूं भिखारी, हम सब भिखारी। और पूछा उनके सामने और कोई बड़ा है कि आप बता दो मुझे? तो है नहीं, उनके सामने और कोई बड़ा नहीं। तो हां अब सबको छोड़कर मुझे उनकी सेवा करनी। तो ये जो जर्मन व्यक्ति ये विद्वान जब आया तो इसने देखा कि ये सभी कार्य में लगे हैं, इसका अर्थ है कि इन्हें किसी ने लगाया है कार्य में, इनका भी सुपरवाइजर कोई है। तो ये ढूंढने निकला कि कौन है वो व्यक्ति जिसे किसी ने भी कार्य में नहीं लगाया। तो ये व्यक्ति पहुंचा गौड़िया मठ। उस समय गौड़िया मठ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत से खोले थे, तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण की सुंदर छवि देखी बांसुरी बजाते हुए। तो भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए और श्रीमती राधा रानी के साथ विहार करते हुए इस मुद्रा में देखकर ये व्यक्ति निष्कर्ष पर आया कि यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो सकते हैं। तो पूछा गया भाई कैसे? क्योंकि ये केवल आनंद का अनुभव कर रहे हैं, केवल आनंद का अनुभव। इस संसार में व्यक्ति अपने आप को कह सकता है कि मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूं, परंतु वो सीमित अनुभव होता है आनंद का, और वो आनंद की परिभाषा भी पहले जाननी होगी कि वो आनंद है कि नहीं। जैसे आज दोपहर में एक कॉलेज प्रोग्राम में कर रहा था तो वहां पर एक विद्यार्थी वो मुझसे कह रहे थे कि ये भगवान को बाहरी रूप से पूजने की आवश्यकता क्या है, यदि मन में ही मैं आनंद का अनुभव करूं तो मन का आनंद ही यदि मुझे संतुष्ट कर रहा है तो मुझे मंदिर या गुरुद्वारा या ये सब जगह पर जाने की आवश्यकता क्या है, भगवान के सामने माथा टेकने की आवश्यकता क्या है। और ये भी कह दिया कि यदि मैं किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा रहा और यदि मैं किसी को सुख भी नहीं दे रहा परंतु मैं निरासक्त हूं, किसी को पीड़ा पहुंचाने से किसी को सुख देने से दोनों से निरासक्त, तो क्या ये निरासक्ति मेरा सुख नहीं मैं मान सकता कि मैं निरासक्त हूं, मैं किसी से प्रभावित नहीं होता कि कोई मेरे वजह से सुखी हो रहा है या मेरे वजह से दुखी हो रहा है, क्योंकि मैं निरासक्त हूं और मेरे अनुसार यही आध्यात्मिक सुख होना चाहिए। तो व्यक्ति काफी गहरा सोच रहा था, अपने आप को गहरा सोचने वाला व्यक्ति मान रहा था। तो हमने कहा कि ये जो सुख तुम कह रहे हो कि किसी को दुख नहीं पहुंचाना और किसी को सुख भी नहीं पहुंचाना, उससे निरासक्त रहना और अपने आप में ही वो सुख की अनुभूति करना, यही आध्यात्मिक सुख है। तो हमने कहा कि ये उस सुख के समान है कि मानो कोई व्यक्ति दिन भर काम कर कर परेशान है, थका हारा घर पर आता है, तो थक कर जब सोता है तो जो नींद का सुख है वो इसी समान है। परंतु वो जो नींद का सुख है वो वास्तविक सुख नहीं। जब कोई व्यक्ति लेट जाता है बिस्तर पर सोने के लिए तो उसकी थकान दूर हुई, इसलिए अपने आप को सुखी मान रहा है। वो एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से सुख नहीं है, वो नितांत केवल दुख की वृद्धि कम हुई है, बस केवल थोड़ा, और कुछ समय के लिए, 4-5 घंटा के लिए बिल्कुल बेहोश अवस्था में, मैं कौन हूं, कहां सोया हूं, ये कौन सा देश है, कुछ पता नहीं, बिल्कुल बेहोश अवस्था में, मृत अवस्था में वो व्यक्ति पड़ा रहता है। परंतु जैसे ही सूर्योदय होता है, और आजकल तो सूर्योदय पहले ही हो जाता है, कई बार लोग उठते हैं चंद्रोदय के समय भी, तो जब जो भी उदय के समय वो उदित हो, तब फिर सारी जो समस्या है वैसे के वैसे सामने। ये नहीं कि अब जग गए हैं तो इतना सुख का अनुभव किया है नींद में तो सारे दुख का निवारण हो गया होगा। अत्यंत दुख निवृत्ति, अत्यंत दुख निवृत्ति, इसे वास्तविक रूप में यदि सुख कहा जाए तो वो सुख वही होगा जब हम इस भौतिक संसार से, इस भौतिक देह से बाहर निकलेंगे और आध्यात्मिक संसार में जाएंगे। उसे कहेंगे आत्यंतिक दुख निवृत्ति, शास्त्र में कहते हैं पूर्ण प्रकार से दुख की निवृत्ति। परंतु जब तक ये दुख फिर से आ रहे हैं, हम केवल इसे पीछे ढकेल रहे हैं। जीवन किस में जा रहा है? जीवन केवल इसी में जा रहा है कि दुख बाहर उमड़ उमड़ कर हमारे ऊपर टूट पड़ रहे हैं, और हम केवल दिन भर ये दुखों को थोड़ा अपने से दूर रख रहे हैं। यही जीवन है केवल। और जिस व्यक्ति ने दुख को जितना ज्यादा दूर रख रखा है वो अपने आप को उतना सुखी मान रहा है कि मैंने अपने दुख को 1 मील दूर रखा है तो मैं तुमसे ज्यादा सुखी, क्योंकि तुमने अपना दुख केवल 0.5 मील दूर रखा है। तो जो व्यक्ति जितना दूर दुख को ढकले उतना वो अपने आप को सुखी मान रहा। परंतु यहां पर भगवान जो आनंद घन है, आनंद घन स्वरूप भगवान, उन्हें कोई चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी माता यशोदा का गुणगान कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को कोई आवश्यकता नहीं, परंतु फिर भी इतना आगे आ आकर माता यशोदा का प्रेम का आदान प्रदान वो ले रहे हैं। तो कल हम वहां तक पहुंचे थे कि माता यशोदा अब दूध को संभालने गई अंदर, पद्मगंधा दूध, और दूध भी सोच रहा था कि क्या मेरे जीवन जीकर मैं क्या करूं यहां पर। तो वो आत्महत्या करने के लिए उफन कर अग्नि में गिर रहा है, यहां पर माता यशोदा उसे संभाल रही है, और कृष्ण वहां पर जो कि आप्त काम, ये एक ऐश्वर्य है भगवान श्री कृष्ण का। आप्त काम का अर्थ क्या है? कि थोड़ी सी ऑफरिंग से वो भगवान प्रसन्न संतुष्ट हो जाते हैं। केवल थोड़ी सी भक्ति, थोड़ा सा भोग यदि भगवान को चढ़ा दिया जाए, जैसे कि गीता में भगवान कहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरितम अश्नामि प्रियतात्मनः। भगवान इसमें कह रहे हैं कि केवल एक पत्र, ऐसा नहीं कि पूरा पेड़ लाकर मुझे अर्पित करो। यदि पेड़ में से केवल एक पत्ता के छिलके तो जले हुए केले के छिलकों से जो धुआं निकलता है उसे यदि सांसों में सूंघा जाए लिया जाए तो वो उसी नशे के समान उन्हें प्रतीत होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी सोचे, मैंने आज तक अपने जीवन में केले के फल के बहुत से उपयोग देखे हैं कि भारत में केले का फल जो है उसके बहुत से उपयोग हैं। केले का मिल्क शेक बना सकते हैं, बनाना शेक आप बना सकते हैं, केले के चिप्स बना सकते हैं, केले की सब्जी बना सकते हैं, केले के पत्ते पर खा सकते हैं। जैसे कि पाश्चात्य देश में ये केले के पत्ते के ऊपर खाना, ये उन्हें समझ में नहीं आता कि ये कौन सी प्लेट है। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि दक्षिण भारत के एक आश्रम में, आध्यात्मिक आश्रम था, तो वहां पर एक व्यक्ति, अमेरिका का व्यक्ति, योग साधना सीखने के लिए वहां पर गया। तो सबसे पहले उन्हें वहां पर भोजन परोसा गया, तो भोजन परोसा गया केले के पत्ते के ऊपर। तो केले के पत्ते के ऊपर भोजन परोसा गया तो पूरा भोजन सांबर, चावल, इडली और ये सारी चीजें थी। तो उसके पश्चात जब पूछा गया उनसे कि भोजन कैसा लगा, बोला भोजन तो बहुत उत्कृष्ट था, परंतु जो सलाद था वो थोड़ा कच्चा था। तो उन्होंने पूछा, भाई हमने सलाद इत्यादि तो कुछ दिया नहीं। नहीं, वो जिसके ऊपर सब कुछ लगाया गया था वो हरा हरा। अरे वो तो केले का पत्ता, वो तो प्लेट था वो। उन्हें लगा कि वो कोई सलाद था तो उसे भी वो खा गए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने सोचा कि हमने भारत में केले के फल के बहुत से उपयोग देखे हैं। केले के पत्ते को भी केवल प्लेट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, परंतु ये और केले का छिलका, इसका उपयोग आज तक कभी नहीं। श्रील प्रभुपाद जी याद किए कि एक कथा है केवल, जब भगवान श्री कृष्ण को विदुराणी ने केले के छिलके अर्पित किए, तो फिर हां हम संप्रदाय में है ना, फिर हम संप्रदाय में है कि यदि विदुर की पत्नी, उन्होंने भगवान को केले के छिलके अर्पित किए, तो हम भी केले के छिलके उपयोग में ला रहे हैं। परंतु वो किस लिए ला रहे थे, नशे में? ये विदुराणी ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि केले के छिलके को इस प्रकार से कोई व्यक्ति विकृत तरीके से उपयोग में ला सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी आश्चर्य करने लगे, और वो पूरा रॉक शो होने के पश्चात श्रील प्रभुपाद जी जब फिर से मंदिर में आए, तो वहां पर ब्रह्मानंद प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के पास आते हैं और कहते हैं कि ये पूरा जो रॉक ग्रुप था, पत्थरी ग्रुप, ये पूरा रॉक ग्रुप जो बनाना डांस कर रहा था, ये हर रोज अपने मंदिर को क्रेट भर कर केला अर्पित करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, ठीक है भाई, भगवान कहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो ब्रह्मानंद प्रभु कहे कि एक शर्त है इनके लिए, शर्त ये है कि केला आप भगवान को अर्पित करना, छिलका उन्हें वापस दे देना, छिलका उन्हें वापस मिलना चाहिए। तो प्रभुपाद जी सोचने लगे कि भगवान ने जब इस श्लोक में कहा पत्रम पुष्पम फलम, तो भगवान ये कभी सोचे नहीं थे कि कोई व्यक्ति मुझे फल अर्पित करेगा परंतु छिलका मांग लेगा, कि फल भगवान आपके लिए, छिलका मेरे लिए। तो विदुराणी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को केले के छिलके अर्पित किए, और भगवान देखिए जब शांति दूत बनकर गए थे तो ये कथा है महाभारत में कि भगवान वहां पर पहुंचते ही दुर्योधन ने सबसे पहला न्योता दिया। क्या न्योता दिया कि मेरे पास आकर 56 भोग खाना, इस प्रकार से बुलाया भगवान को। तो वो जानता था कि ये जो है बहुत मायावी है ये कृष्ण, और मेन पावर हाउस है पांडवों का, तो मेन पावर हाउस को वश में यदि मैं कर लूं तो फिर पांडव वश में हो जाएंगे। तो किसी व्यक्ति को यदि वश में करना है तो एक बहुत अच्छा तरीका है, खिलाओ खिलाओ। तो दुर्योधन ने सोचा कि ये जो कृष्ण है इनको मैं खिलाता हूं पेट भर कर, उसके पश्चात फिर देखते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को बोलता है कि 56 भोग आयोजित किया है, आकर ग्रहण कर लेना सारा भोग, और शुद्ध घी में बनाया है। तो भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को कहते हैं कि दुर्योधन देखो, व्यक्ति अलग अलग कारणों के वजह से किसी व्यक्ति के घर में जाता है खाने के लिए, दो कारणों के वजह से। सबसे पहला कारण, व्यक्ति किसी के घर जाता है भोजन करने के लिए जब वो भूखा है, ये सबसे पहला कारण, भूख लगी है तो जाता है। दूसरा कारण यह है कि यदि वो उस व्यक्ति से प्रेम करता है तो प्रेम वश जाएगा, यदि भूख भी ना हो तो प्रेम वश वो चला जाता है। परंतु मेरे और तुम्हारे में रिश्ता ऐसा है कि न तो मैं तुमसे प्रेम करता हूं और न मैं भूखा रहता हूं, क्योंकि मैं भगवान हूं। न तो मुझे भूख लगती है और न मुझे कोई प्रेम है तुमसे। तो दोनों कारणों के वजह से मेरा तुम्हारे घर आना, ये कोई इसमें तुक नहीं लगता। तो भगवान ने दुर्योधन से कहा, और हम उस भजन में भी गाते हैं, दुर्योधन का भोग न खायो, रुखो शाक विदुर घर खायो। भगवान ने कह दिया कि इस पूरे हस्तिनापुर में एक ही व्यक्ति है, ये दो कारणों के वजह से मैं उस व्यक्ति के घर पर जाकर खाऊंगा, वो है विदुर। कि एक तो मैं प्रेम करता हूं उनसे, और दूसरा मैं भूखा रहता हूं उनके भोग के लिए। तो इसलिए महात्मा विदुर के घर ही मैं जाऊंगा केवल इस पूरे हस्तिनापुर में, और यदि विदुर वहां पर रूखा सूखा कोई साग भी मुझे दे दें तो वो भी मुझे मेरे लिए बहुत प्रिय रहेगा। तो भगवान ये कहकर गए कि विदुर के घर में यदि रूखा साग भी मिल जाए खाने के लिए, रूखी सूखी कोई रोटी और थोड़ा सा साग ये भी यदि मिल जाए तो वो भी मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। तो भगवान ये कहते हुए गए हैं तो हो सकता है कि भगवान मन में ये सोच रहे हो कि कम से कम रूखी सूखी कोई रोटी या साग ये तो मिलेगा विदुर के घर में। तो ये सोचते हुए, जैसे यदि जब कोई हमें प्रसाद के लिए न्योता देता है तो पहले से मन में कुछ एक मेनू सेट कर जाते हैं, जा रहे हैं तो व्यक्ति साउथ इंडियन है तो ये सब मेनू हो सकता है, व्यक्ति गुजराती है तो ये मेनू हो सकता है, यदि कोई व्यक्ति अभी जैसे पाश्चात्य देश में कुछ समझ में नहीं आता क्या मिलने वाला है वहां पर, विशेष रूप से रशिया में, वहां पर हमने कहा कि आप कुछ भारतीय खिला सकते हैं हमें, क्योंकि वहां पर वो लोग जो कुछ खाते वो देखने मात्र से ऐसे लगता नहीं कि ये खाने के लिए है कि ये अभी तक ये पका है कि अधपका है कि इसको पकाना बाकी है कि क्या है ये। तो हमने पूछा कि कुछ भारतीय प्रसाद कुछ वहां पर मिलेगा, तो उन्होंने कहा कल हम आपके लिए भारतीय बनाते हैं। तो उन्होंने एक दिन भारतीय बनाया हमारे लिए, और वो भारतीय क्या था, उन्होंने एक कटोरा भरकर सब्जी रख दी सामने, सब्जी रखी और एक दूसरे छोटे से कटोरे में दाल रख दी। तो हमने देखा सब्जी है दाल है, तो हम महाप्रसादे पूरी प्रार्थना बोली और सोचा कि महाप्रसादे बोलने के अंत तक कुछ आएगा, चावल या चपाती या कुछ। तो महाप्रसादे गोविंदे सब कुछ बोलने के बाद जय निमाय जय निताय, हम एक भक्त से वहां पर मिले, क्या एक एक कहानी के बीच में दूसरी कहानियां आ रही। एक भक्त से हम मिले, वो भक्त बता रहे थे कि वो जब ब्रह्मचारी आश्रम में थे तो उन्हें जो हरे कृष्णा मिठाई बहुत अच्छी लगती थी, तो इतनी अच्छी लगती थी उन्हें हरे कृष्णा मिठाई कि जब वो महाप्रसादे प्रार्थना गाना प्रारंभ करते थे, ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयामाय करी बारे जीवा जाए, स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई सही अन्न मृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमी डाको चैतन्य निताय, जय निमाय जय मिठाय। तो उन्हें मिठाई इतनी अच्छी लगती थी कि रोज केवल यदि प्लेट में न भी हो तो मन में तो गा लेना चाहिए जय निमाय जय मिठाय। तो हम भी अपनी प्रार्थना कहे कि मिठाई नहीं तो कम से कम कोई रोटी या चावल इसके साथ। तो पूरा पतीला भरकर सब्जी और दाल केवल, तो हमने कहा कोई चावल और चपाती नहीं, सब्जी भारतीय सब्जी और दाल भारतीय दाल। मैंने कहा भारत में दाल सब्जी के साथ चपाती खाई जाती है और चावल और दाल खाया जाता है। नहीं नहीं, वो तो हमारे पास कुछ था नहीं, तो हमारे पास जो था सब्जियां थी थोड़ी दाल थी तो बना दी हमने। तो हमें लगा कि शायद हमारी कोई पिछली योनि याद दिला रहे हैं कि जब शायद बकरी रहा होऊंगा तो केवल सब्जियों के ऊपर चर्चर करता रहूंगा, तो इसलिए सब्जी ला कर रख दी। तो हम ये मुद्दा कह रहे थे कि जब किसी के घर में प्रसाद का न्योता मिलता है तो मन में एक साधारणतः एक मेनू हम बांध कर जाते हैं कि इसके घर में ये सब मिलेगा, पिछली बार जब गए थे तो ये सब मिला था, तो ये सब बांध कर जाते हैं मन में। तो भगवान श्री कृष्ण इसी प्रकार से सोच कर गए कि दुर्योधन को मैं कहकर गया हूं कि विदुर के घर में थोड़ा रूखा कोई साग या रूखी सूखी रोटी ये सब कुछ मिलेगा, परंतु वहां पर जाते हैं तो क्या मिलता है भगवान को देखिए, कि एक तो केवल फल लेकर आ गए, क्योंकि विदुरानी अचानक अकस्मात भगवान पहुंच गए तो विदुरानी को समझ में नहीं आया कि भगवान पहुंच गए, अब भगवान को आसन दें, इनको क्या अर्पित करें, चरण धोएं, प्रार्थना करें, दंडवत करें, क्या करें, अचानक अकस्मात भगवान आ गए। तो जो कुछ था, थोड़े से केले थे तो केले तुरंत लेकर आ गई विदुरानी, और इतनी भाव विभोर हो गई कि केले छील रही है और कचरे का डब्बा रख दिया बगल में, तो केला निकाल निकाल कर कचरे में और छिलका भगवान को, और भगवान भी खाए जा रहे हैं, छिलके को खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। और विदुर ने जब देखा तो विदुर ने कहा अरे 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 ये क्या इतना बड़ा पाप कर रही हो, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को केले के छिलके। तब उसे समझ में आया, वो फिर अपने होश में आई और फिर देखने लगी कि अरे भाई ये तो मैं कोई ठीक नहीं कर रही थी। तब तब फिर भगवान ने विदुर से कहा कि क्यों रोका तुमने। भगवान विदुर को थोड़ा डांटने लगे कि क्यों रोका, इतने प्रेम से ये खिला रही थी मुझे, और ये जो केले के छिलके में जो प्रेम मैं अनुभव या आस्वादन कर रहा था वो मैंने आज तक किसी भी केले में नहीं किया। तब फिर भगवान कहे कि नहीं, अब और अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है, अब मुझे वो आस्वादन नहीं मिल रहा, क्योंकि अब तुम मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानकर जो कुछ अर्पित करोगी तो उसमें इतना प्रेम नहीं रहेगा जो कि केले के छिलकों में रह रहा था। तो भगवान देखिए आप्त काम है। शबरी ने क्या खिलाया भगवान को, शबरी तो अपने जूठे मुंह से निकला हुआ बेर खिला रही है भगवान को, और भगवान उसका आस्वादन कर रहे हैं जूठे शबरी के बेर। तो देखिए भगवान जो है वो इतने कृपालु हैं। कल हमने चर्चा की कि एक पुष्प यदि कोई भक्त अर्पित करता है तो उसके पीछे कितने लोगों का उद्धार हो जाता है। ब्रह्मांड पुराण में कथा है कि एक व्यक्ति था एक गांव में जो कि एक व्यभिचारी व्यक्ति था, जो रोज अपनी पत्नी को छोड़कर किसी पर स्त्री का गमन करने जाया करता था। तो नदी को पार कर दूसरे गांव में जाया करता था मिलने के लिए रोज। तो एक दिन हुआ ऐसा कि वर्षा हो रही थी और बाढ़ आ चुकी थी नदी में, तो ये उस दिन अपने बगीचे से एक बहुत ही विशेष गुलाब का पुष्प लेकर वो जा रहा था कि ये पुष्प मैं आज, उसका जन्मदिन है तो आज उसके जन्मदिन पर ये पुष्प अर्पित करूंगा मेरे बगीचे का। तो पुष्प लेकर वो जा रहा था, परंतु देखा कि कोई वहां पर नाव नहीं, नाविक नहीं, बाढ़ है नदी में तो कैसे मैं पार करूंगा। परंतु इतनी लालसा थी मिलने की तो वो चलना प्रारंभ किया नदी में अंदर कि कुछ भी हो जाए सात समंदर पार कर पहुंचूंगा अपने प्रियतमा के पास। तो वो चलने लगा, नदी से चलने लगा, कुछ तैरना थोड़ा बहुत आता था तो जहां तक वो चल पा रहा था तो चल रहा था। अब नदी गहरी हो रही थी, बाढ़ और बढ़ रही थी, ऊपर से वर्षा, और अब ऐसी स्थिति आ गई कि इसे समझ में आया कि मुझे तैरना वैरना तो आता नहीं यहां पर, अब मैं डूबने जाने वाला हूं। तो बचपन में उसने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण को यदि कोई पुष्प अर्पित करता है तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। तो इसने सोचा कि मेरी एक ही इच्छा थी कि ये पुष्प मेरी प्रियतमा तक पहुंचे, तो भगवान श्री कृष्ण को मैं ये अर्पित करता हूं अपनी ये इच्छा व्यक्त करते हुए, क्योंकि अब तो मैं मरने वाला हूं। तो मरते मरते उसने वो पुष्प आकाश में फेंका, ओम केशवाय अर्पणमस्तु एतद् पुष्पम, इस प्रकार से फेंकते हुए उसने अपने प्राण त्याग दिए। और क्योंकि उसने अपने जीवन भर केवल व्यभिचार किया था तो यमदूत आ गए और यमदूत तुरंत उसकी आत्मा को ले गए यमलोक, और वहां पर चित्रगुप्त ने कहा कि रुक जाओ, इसे कोई यमलोक की यातना देने से पहले इसका एक रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी आते आते इसने कुछ ऐसा कर दिया है कि उसके वजह से हमें देख संभाल कर इसे कोई दंड देना होगा। अरे क्या कर दिया इसने, अभी मरने से पहले एक पुष्प अर्पित कर दिया है भगवान श्री कृष्ण को। परंतु वो तो भगवान श्री कृष्ण को नहीं, वो तो अपनी प्रेमिका के लिए कर रहा था ही, इसे अजामिल। तो यमदूत फिर समझ गए कि ये भगवान कृष्ण के विषय में जो कुछ होता है हम तकलीफ में पड़ जाते हैं। वो एक अजामिल था, वो अपने पुत्र को पुकार रहा है नारायण नारायण नारायण, और विष्णु दूत आ गए और फिर इतना बड़ा बवाल खड़ा किया और विवाद हुआ और फिर ले गए और खाली हाथ आना पड़ा, फिर ये और फिर एक और ये। तो ठीक है कि कह दिया होगा इसने केशवाय अर्पणम अस्तु, परंतु मन में तो वो प्रेमिका के विषय में सोच रहा था। हाँ ठीक है, तो इसे भगवत धाम या भगवान कृष्ण का धाम तो नहीं मिलेगा, परंतु क्योंकि इसने वो एक भगवान का नाम उच्चारण किया और उनके नाम से अर्पित किया वो पुष्प, तो इसे कम से कम स्वर्गलोक का दर्शन तो होना चाहिए। हाँ ठीक है, स्वर्गलोक का दर्शन करा देंगे। तो यमदूत तीनों पकड़े उसे और उसे पूछा चित्रगुप्त से, कितना समय दर्शन कराना है? केवल कुछ मिनट, केवल एक दो मिनट खड़ा रखना सामने, स्वर्ग के द्वार का दर्शन कर लेगा और फिर एक दो मिनट बाद सीधा ले आना, फिर हम देखेंगे। तो तीनों पकड़कर ले गए इस व्यक्ति को स्वर्ग के द्वार के सामने। तो इसने पूछा कि वैसे समझ में आ गया कि क्या क्या हो रहा है और किसके वजह से अब स्वर्ग के द्वार के पास में ले जाया जा रहा है। एक पुष्प मैंने अर्पित किया उसके लिए दो मिनट मैंने केवल कुछ सेकंड मैंने लगाए वो पुष्प अर्पित करने के लिए, और मुझे 2 मिनट, ये तो अच्छा सौदा है। तो 2 मिनट मुझे स्वर्ग के द्वार का दर्शन मिल रहा है। तो वहां पे स्वर्ग के द्वार के सामने यमदूत लाकर खड़ा कर दिए और वहां पर जो पहरेदार थे वो पहरेदार खड़े हैं अपने भाल और तलवार ये सब लेकर, और स्वर्ग है भाई, स्वर्ग का द्वार भी तो बहुत विशेष होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि यहां पर भी हम देखते हैं कि बंगलों के सामने बागीचा होता है, गार्डन होता है, सब कुछ उद्यान होता है। तो सोचिए स्वर्ग जहां पर नंदन कानन वन है, उपवन है, तो स्वर्ग का द्वार कैसा रहेगा? तो वहां पर उसने देखा कि ये पहरेदार भाल और तलवार लेकर खड़े हैं और स्वर्ग के चारों तरफ फूलों का बागीचा, इतने सारे फूल। तो इसने सोचा मैंने एक फूल अर्पित किया और यमदूत टाइम देख रहे हैं, 1 मिनट हो गया इसका, बस एक और मिनट और उसके पश्चात हमारा ये। तो फिर उन्होंने वो टाइम देख रहे थे, 1 मिनट बाकी है और इसे भी पता था कि केवल 2 मिनट मुझे मिले हैं। तो इसने क्या किया, तुरंत अपने आप को यमदूत के पकड़ से अपने आप को निकाला उसने और वो पहरेदार की तलवार ले ली। अचानक एक ही उसने अपने जंप में ये सब कुछ कर लिया, एक छलांग मारी, वो पहरेदार की तलवार हाथ में ली और वो तलवार को वो फूलों के बगीचे के ऊपर मारते हुए, फूलों को काटते हुए, ओम गोविंदाय अर्पणमस्तु, केशवाय अर्पणमस्तु, कृष्णाय अर्पणमस्तु, ये सारे फूलों को वहां पर तलवार से काटते हुए वो सारे फूल उड़ रहे हैं और इसे अपने मंत्र गा रहा है, गोविंदाय अर्पणमस्तु, एतानि पुष्पाणि कृष्णाय अर्पणमस्तु, मुकुंदाय अर्पणमस्तु। और ये यमदूत देखे कि 1 मिनट और बाकी है इसका और उसने 1 मिनट में वो सामने जितने भी फूल थे तलवार से मार मार कर सब अर्पित कर दिए। तो अब यमदूत सोचने लगे ये तो बहुत चतुर व्यक्ति है। तो अब चित्रगुप्त को फोन लगाया और पूछा भाई यहां पर तो इसने कर दिया अपना काम, अब आप बताइए। तो चित्रगुप्त कहते हैं सारी एंट्री मैंने कर दी, इधर सब SMS मिल गया मुझे कि कितने फूल इसने अर्पित किए हैं। इसने पूरे आधे मिनट में अब तक 15 फूल अर्पित कर दिए इसने। तो उसका कैलकुलेशन यदि करें तो इसे और 30 मिनट अभी अंदर छोड़ना होगा। तो 30 मिनट इसे अंदर ले जाना होगा, उसके पश्चात यमलोक लाना होगा। तो अब इन्होंने सोचा कि ये 30 मिनट अंदर जाएगा तो पता नहीं कितने पुष्प अर्पित कर देगा। तो ये जानते थे और ये भी कहा हाँ मेरा केवल मेरी नजर केवल अब पुष्पों के ऊपर है। और जैसे ही उसे अंदर छोड़ा, स्वर्ग के द्वार के अंदर छोड़ा, स्वर्ग के द्वार के अंदर जितने भी वहां पर फूल थे, उसे 30 मिनट जो मिला हुआ था, एक क्षण भी उसने वहां पर जाने नहीं दिया बेकार फालतू। हर एक क्षण वो फूलों को अर्पित करता गया, अर्पित करता गया, अर्पित करता गया। और जितना भी समय वो वहां पर स्वर्ग में रहा, वो न तो कोई अप्सरा को देखता, न कोई सोमरस पीता, केवल वो फूलों को दे। पूरे बागीचे नंदन कानन उपवन को खत्म कर दिया उसने। वहां के स्वर्ग के माली परेशान, इंद्र परेशान। इंद्र पहली बार इस परेशानी में पड़े कि यहां के सारे पुष्प कहां गए। तो सारे पुष्पों को अर्पित कर दिया भगवान को, और जितना भी समय वो स्वर्ग में रहा, सारे पुष्प अर्पित करने के पश्चात विष्णुदूत वहां पर प्रकट हुए और उसे ले गए श्री वैकुंठ धाम। तो ये भगवान का गुण। भगवान कहे हैं पत्रम पुष्पम फल। अरे यदि कुछ भी ना मिले, एक पत्ता भी ना मिले, यदि एक पुष्प भी, यदि एक फल भी ना मिले, तो यदि थोड़ा जल तोयम, यदि थोड़ा जल भी यदि मिल जाए तो वो भी अर्पित कर दो, तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। और यहां पर तो भगवान कहे हैं कि अर्पित करो, परंतु भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान से अधिक दयालु होते हैं। तो महाराज कुलशेखर वो अपनी एक प्रार्थना में वो कहते हैं, नाथेना पुरुषोत्तमे त्रिजगताम एकाधिपे चेतसा सेव्ये स्वस्य पदस्य दातरि परे नारायणे तिष्ठति यम कंचित पुरुषाधमम कटिपय ग्रामेशमल्पार्थदम् सेवायै मृगयामहे नरमहो मूढ़ो वरा का वयम्। इस सुंदर श्लोक में महाराज कुलशेखर कहते हैं कि यदि कोई शारीरिक रूप से भी भगवान को कुछ अर्पित न कर पाए, परंतु यदि वो चेतसा मन में भगवान के विषय में सोच रहा है, और यदि मन में भी यदि वो भगवान को कुछ अर्पित कर दे, चेतसा यदि मन में भी वो भगवान की भक्ति कर दे, तो वो भगवान जो कि एक अधिपति त्रिजगताम, तीनों जगत के एक अधिपति हैं वो नारायण, केवल मानसिक सेवा स्वीकार करने मात्र से उस व्यक्ति को वो क्या प्रदान कर देते हैं। नारायणे तिष्ठति, अपना वैकुंठ धाम, उस भक्त को कहते हैं मेरे बंगले में आकर रहो। कौन सा बॉस होगा इस संसार का कि यदि उस बॉस को फोन करके कोई कहे कि बॉस आज मैं सोच रहा हूं आपके बारे में, मैं सोच रहा हूं आप कैसे बैठे हैं दफ्तर में और कैसे घिस रहे हैं अपना पेन, मैं सोच रहा हूं, और बस आपकी ये छवि की बलिहारी, बस आपकी ये छवि देखने मात्र से मेरा जो हृदय है वो प्रेमाश्रु से भर जा रहा, गदगद हो रहा है मेरा कंठ केवल आपके स्मरण मात्र से। यदि कोई व्यक्ति इस भौतिक संसार के बॉस को फोन करके कहे कि मैं आज मानसिक सेवा कर रहा हूं, आपकी मानसिक सेवा आज से लेके पूरे महीने भर मानसिक सेवा होगी, तो बॉस कहेगा ठीक है, एक तारीख, आज एक तारीख है ना, एक तारीख को मैं भी मानसिक पगार दूंगा, मैं भी मन में सोच रहा हूं कि आज इतनी अच्छी मानसिक सेवा मेरे सेवक ने की है, तो आज इतनी अच्छी सेवा के लिए इसे मैं दिवाली का बोनस आज ही दे देता हूं। और जितने भी दिवाली आगे आने वाली है, सारी दिवालियों का बोनस आज ही दे देता हूं। तो इस भौतिक संसार में कोई भी ऐसा बॉस नहीं कि जिसकी मानसिक सेवा करने से वो व्यक्ति, यदि सरकार कोई मकान भी देती है तो जब वो सेवा हो जाती है, रिटायर हो जाता है व्यक्ति सरकारी नौकरी से, तो वो सरकार उस मकान को भी छीन लेती है। अब जाओ अपना बनाओ, जो भी कुछ बनाना है ये सरकार का है, छोड़ो इसे, खाली करो, नोटिस दिया जाता है। परंतु यहां पर भगवान बोल रहे हैं कि महाराज कुलशेखर बोल रहे हैं कि जो भगवान श्री नारायण का भक्त है, मानसिक सेवा भी यदि कर दे तो भगवान श्री नारायण अपने ही घर में निवास स्थान देते हैं। घर छीनना तो दूर की बात है, अपने ही घर में निवास स्थान। कौन सा बॉस है इस संसार का जो रिटायरमेंट के पश्चात अपने सेवक को कहेगा अब मेरे बंगले में आकर रहो। परंतु यहां पर भगवान की कृपा देखिए, भक्ति रसामृत सिंधु में ये कथा है ब्राह्मण की, जो कि गोदावरी के तट पर, वो हर समय मानसिक सेवा में लगता था भगवान कृष्ण की। तो एक दिन अपने ध्यान में बैठा हुआ गोदावरी के तट पर, हो सकता है नासिक में ही हो, तो गोदावरी के तट पर वो ध्यान में लगा हुआ, वो ध्यान लगा रहा है कि आज भगवान को खीर खिलाई जाए। तो उसने ध्यान लगाया कि जो उत्कृष्ट दूध है, जो सर्व उत्कृष्ट दूध वो उसने उत्पन्न किया और उसे उबालने के लिए रखा, और खीर कैसे बनाई जाती है, उसमें सबसे उत्कृष्ट बासमती चावल, कोहिनूर छाप, तो बासमती चावल में और अलग अलग प्रकार के उसमें रूखे सूखे फल, ड्राई फ्रूट्स, वो सब कुछ उसमें डालकर वो खीर उसने पकाई, उसके अंदर केसर, पिस्ता और ये वो क्या कुछ नहीं, सब मन में, क्योंकि मन में कहीं से भी कुछ भी डाल सकते हैं। तो जितने भी केसर की दुकान थी, सारे केसर की दुकान में जितना भी केसर था सब खरीद लिया और उस खीर में डाला, जितना भी पिस्ता सब कुछ डाला, सब कुछ उत्कृष्ट पदार्थ उस खीर में डालकर उसने अब सोचा कि अब खीर भगवान को सोने के एक बर्तन में अर्पित किया जाए। तो सोने का बर्तन और सोचा कि सोने के बर्तन के ऊपर कुछ मणियों को उसमें लगाया जाए, तो मणियों को लगाया, अलग अलग प्रकार के कोहिनूर, फिर से कोहिनूर मणि को भी लगा दिया। तो ये सब कुछ वो कर रहा था और फिर उसने सोचा कि अरे खीर तो भगवान या किसी को भी जब खीर खिलाई जाती है तो खीर ठंडी होनी चाहिए, ठंडी खीर जो है उसका स्वाद और उभर कर आता है। हाँ, सत्य बात है, यदि गरम गरम खीर किसी को खिलाई जाए तो गरम गरम खीर वो खाने में आनंद नहीं आता, खीर को ठंडा कर। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के लिए शरद पूर्णिमा के दिन भक्त जो है वो खीर को, पूर्णिमा का जो चंद्र है, पूर्णिमा के चंद्र के नीचे उस खीर को ठंडा कर खिलाते हैं। राधानाथ महाराज एक बार बता रहे थे कि न्यू वृंदावन में, अमेरिका में, वहां पर यह प्रथा थी कि ऐसी उत्कृष्ट खीर वो लोग बनाते शरद पूर्णिमा के दिन, और उसे पूरी रात भर पूर्णिमा के चांद के नीचे रखते ठंडा होने के लिए, क्योंकि दूसरे दिन फिर वो भगवान को उसका भोग चढ़ाते, क्योंकि रात भर भगवान रासलीला कर रहे हैं, तो थकने के बाद जब सुबह सुबह भूख लगेगी तो ये ठंडी चंद्रमा की रोशनी से ठंडी हुई खीर उन्हें खिलाई जाएगी। तो ये वो लोग हर वर्ष किया करते थे और वो खीर ऐसी खीर होती थी कि लोग दूसरे शरद पूर्णिमा तक उंगली चाटते रहते। तो अब कुछ भक्तों ने, वहां के जो प्रेसिडेंट भी थे इसके अंदर, तो उन्होंने ये योजना की कि सुबह मंगलारती में जब भगवान को ये भोग चढ़ता है खीर का, और उसके पश्चात पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम होने के पश्चात फिर भक्तों को परोसा जाता है, वो खीर परोसी जाती है, तो इन्होंने सोचा कि हम बीच में गायब करते हैं, सारी खीर गायब करते हैं, तो अब ये खीर कैसे गायब की जाए। और क्योंकि सबकी नजर होती, जैसे ही वो खीर भगवान को भोग चढ़ी, उसके उसके पश्चात भक्त वहां पर चढ़े। तो यहां पर ऐसा प्रयोजन किया जा रहा था कि वो खीर को कैसे गायब की जाए। तो उन्होंने देखा कि जो राधानाथ महाराज वहां पर, उनके ऊपर कोई शंका नहीं कर सकता, क्योंकि सभी उनको एक वहां के बहुत ही ऊंचे दर्जे के साधु संत मानते थे, और कोई भी उनके ऊपर कोई संशय नहीं कर पाता था। तो प्रेसिडेंट ने कहा उनको कि आप जाकर चोरी करो। तो उन्होंने कहा मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया और मुझे कोई आवश्यकता नहीं, मुझे थोड़ा सा कर्ण यदि बाद में कोई भक्तों के प्लेट से भी मिल जाए तो बहुत है। नहीं, हम प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट का ऑर्डर है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है। तो ये ऑर्डर दिया गया, तुम पियो या न पियो, लाकर देना है हमें, क्योंकि यदि हम घुसेंगे तो सभी वहां पर बंदूक लेकर तैनात हो जाएंगे हमें मारने के लिए। तो उन्हें किसी प्रकार से वहां पर, क्योंकि ये जब अंदर गए तो कोई शंका नहीं किसी को हुई कि ये व्यक्ति कोई ऐसा भी काम करेगा। तो ये लोग सब बंदूक ताने हुए, जाओ जाओ जाओ, ये आदेश है हमारा, तो जबरदस्ती भेजा गया। तो मंगल आरती हुई, सभी लोग नाच रहे हैं, और ये यहां महाराज वो लेकर बाहर निकले तो सभी देख रहे हैं आज ये क्या लेकर जा रहा है। नहीं, ये भला मानुस है, कुछ नहीं होगा, किसी को कोई शंका है। उन्होंने लाके उनको दे दी सब कुछ, अब जो करना है आपस में आप लोग देखिए। तो ये लोग ले गए और वो खीर को छिपा दिए। अब बात फैली कि खीर गायब। अब ये भगवान कोई खीर चोर गोपीनाथ तो है नहीं कि इन्होंने खीर चोरी की हो। तो खीर किसने चोरी की, वो खीर चोर कौन है, तो ढूंढने के लिए सभी को लगा दिया। और उस समय न्यू वृंदावन में कितने भक्त रहा करते थे पूरे कम्युनिटी में, 800 भक्त कम्युनिटी पे रहा करते थे। 800 लोग मंगल आरती में आते थे और 800 लोगों का अटेंडेंस लगता था। संकेत मिल रहा है, 800 लोगों का अटेंडेंस लगता, केवल मंगलारती के लिए नहीं, मंगलारती के लिए अटेंडेंस लगता, राजभोग आरती के लिए अटेंडेंस लगता, और संध्या आरती के लिए अटेंडेंस लगता। और यदि कोई भी वहां का व्यक्ति एक भी आरती उसने मिस कर दिया तो उसे भोजन सबसे अंत में, प्रसाद सबसे अंत में मिलेगा, उसे जो कुछ बचा होगा, ये नियम था। तो कथा आगे बढ़ाते हैं, बढ़ रही कथा थोड़ी थोड़ी आगे। तो यहां पर अब पूरी जो कम्युनिटी थी वो ढूंढने लगी कि खीर कहां गई, खीर कहां गई। और फिर सब जगह पर चप्पा चप्पा ढूंढ लिया पूरे न्यू वृंदावन कम्युनिटी का, कहीं पर खीर नहीं मिली। तो सोचने लगे कि ये चोर पता नहीं कैसे चोर हैं कि ऐसी चोरी की है कि पूरा चप्पा चप्पा ढूंढ लिया परंतु फिर भी खीर कहीं पर नहीं दिख रही। तो फिर अंततः ये लोग पहुंचे वहां की गौशाला में। सोचे गौशाला में कहां से खीर होगी, उस जगह पर कहां से खीर होगी, फिर भी देख लेते हैं। और गौशाला में ही थी खीर। तो वहां के जो ग्वाले, सारे भक्त अपने हरे कृष्णा के, उन्हें संकेत दिया गया कि सर्च पार्टी आ रहा है, सर्च पार्टी आ रहा है, खीर को छुपाओ, किसी ना किसी तरीके से खीर को छुपाओ। अरे कभी कहां, ये गौशाला इतनी बड़ी नहीं है और यहां पर कहां छुपाएं इस खीर को, यहां पे तो कोई तिजोरी नहीं, कोई कपाट नहीं, कुछ नहीं, कहां छिपाएं, कहीं पर तो छिपाओ। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने क्या किया कि सारे جو گیا تھی وہ کھڑی تھی, اور وہاں کی گیاں بڑی بڑی گیاں, بہت بڑی بڑی گیاں ہوتی ہیں, وہ جرسی گائے بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں, تو اتنی بڑی بڑی گیاں ساری کھڑی تھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پیچھے پیچھے وہ بالٹی کو چھپا چھپا کر لے جا رہے ہیں کہ کوئی بھکت یدی یہاں سے دیکھ لے تو وہ گائے کے پیچھے چھپا چھپا کر رکھیں گے. تو یہ سب کچھ وہ کر رہے تھے, پرنتو بھکت چاروں طرف سے اب آنا شروع کیے. تو بالٹی میں کھیر, اور کیونکہ وہاں پر بہت سی بالٹیاں تھی تو اب بھکتوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سی بالٹی میں کھیر ہے, کیونکہ بہت سی بالٹیاں وہاں پر گیا کا دودھ نکالنے کے لیے رکھی ہوئی تھی. تو اب ایک ایک بالٹی وہ لوگ چیک کر رہے ہیں, ایک ایک بالٹی ایک ایک بالٹی, تو دیکھا یہ بالٹی خالی ہے, اس میں تھوڑا دودھ ہے, یہ بالٹی خالی. تو وہ بالٹی کے نکٹ جب آ رہے تھے تو اب سمجھ میں آنے والا ہے کہ یہی ہے وہ کھیر, اور یہاں پر ہی کسی نے چوری کی ہے. تو انہوں نے کیا یکتی نکالی, یکتی یہ نکالی کہ اس بالٹی جس میں کھیر چرائی ہوئی رکھی تھی, اس بالٹی کو گائے کے تھنوں کے نیچے رکھ دیا, گائے کے جو تھن ہوتے ہیں اس کے نیچے رکھ دیا, اور اس گوالے نے دودھ نکالنا شروع کر دیا. اب کھیر میں دودھ ہوتا ہی ہے تو اور کھیر اور دودھ صحیح. تو یہ بھکت اپنا سرچ پارٹی وہاں پر, وہ سی آئی ڈی سارے جو گھوم رہے تھے آ کر دیکھے, دیکھے کہ اس میں دودھ, اس میں دودھ, اس میں دودھ, دیکھا کہ یہ تو دودھ ہی نکال رہا ہے, اسے کیا دیکھنا, کیونکہ اس نے اوپر تک دودھ بھر دیا اس میں اور نیچے پورا جمی ہوئی کھیر ٹھنڈی. اور پھر یہ سب دیکھنے کے پشچات وہ پورا سرچ پارٹی آگے گیا, کیونکہ اب کہا یہاں پر بھی نہیں, پتہ نہیں کہاں. وہ جیسے گئے تو اب اسے لیا اور سارا دودھ اور کھیر اور سب کچھ ملا کر پھر انہوں نے اس کا آسوادن کیا. تو ہم پھر سے چلتے ہیں گوداوری کے تٹ پر. تو یہاں پر یہ برہمن یہ کھیر, اتکرشٹ کھیر, ٹھنڈی کھیر ارپت کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے سوچا اپنے من میں کہ دیکھا کہ کھیر ٹھنڈی ہوئی ہے کہ نہیں, تو انگلی ڈالی, تو انگلی ڈالی تو کھیر گرم تھی, گرم کھیر تھی. تو جیسے ہی انگلی ڈالی تو من میں سب کچھ چل رہا ہے, تو گرم کھیر میں انگلی ڈالی تو چٹکا لگا, تو ترنت ان کا دھیان بھنگ ہوا. اس مانسک سیوا سے وہ باہر آئے, اور جیسے ہی مانسک سیوا سے باہر آئے تو اوپر ویکنٹ میں نارائن جی ہنسنے لگے. اب نارائن جی جب ہنستے ہیں تو ترنت لکشمی دیوی پوچھ لیتی ہیں کیوں ہنسے, کیونکہ لکشمی دیوی دیکھتی رہتی ہیں کہ نارائن جی جو کچھ کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کارن ہوتا ہے. پہلے ایک بار ہنسے تھے, ہم بتائے تھے اس کے بارے میں, تو لکشمی دیوی پوچھ رہی کیوں ہنسے. تو نارائن نے ترنت وشنو دوتوں کو بلایا کہ وشنو دوتوں کو بلاؤ, اور انہیں کہا کہ جا کر اس گوداوری کے تٹ پر وہ جو برہمن ہے ترنت اسے میرے دھام پر لے کر آؤ, کیونکہ وہ برہمن وہ جب دھیان سے باہر آئے تو انہوں نے اپنی انگلی دیکھی اور ان کی انگلی جل گئی تھی. حالانکہ بھوگ من میں ارپت ہو رہا تھا پرنتو واستوک روپ میں, حالانکہ بھوگ بھی واستوک روپ میں چڑھ رہا تھا پرنتو باہری شاریرک روپ سے ان کی انگلی جل گئی گرم کھیر میں انگلی ڈالنے کی وجہ سے. یہ ہے کیول مانسک سیوا کرنے کا پرینام. تو کہا گیا ہے کہ یدی کوئی ویکتی اتنا غریب ہے یا اتنا کنجوس ہے کہ ایک پتر, ایک پھول یا ایک پشپ یا تھوڑا سا جل بھی نہیں ارپت کر سکتا, تو یدی من میں بھی وہ کر دے. کل ہم نے دیکھا جو کنجوس ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے, سوا روپیہ بھی نہیں چھوڑتے. تو کہا گیا ہے کہ چیتسا نارائنے تشتتی, مہاراج کل شیکر کہتے ہیں کہ کیول من میں بھگوان کے وشے میں سوچنے ماتر سے بھگوان اپنا نارائن دھام پردان کر دیتے ہیں اس بھکت کو. یہ ہے بھگوان کا گن آپت کام, اور وہی بھگوان सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आप्त काम जो है अतृप्त रह गए, अतृप्त रह गए, अतृप्त उत्सृज्य। तो ये भगवान अपना दूसरा ऐश्वर्य का परित्याग कर रहे हैं कि वो आप्त काम का ऐश्वर्य परित्याग कर कर अतृप्त दिखा रहे हैं अपने आप को। कि माता यशोदा, देखिए माता यशोदा कुछ समय के लिए स्तनपान करा रही थी, को तृप्त हो जाना चाहिए था। यदि एक पत्र एक पुष्प से तृप्त हो जाते हैं भगवान, तो यहां पर कुछ समय तक और हर रोज माता यशोदा अपना स्तनपान करा रही हैं, तो तृप्त क्यों नहीं हुए होंगे वो? नहीं 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 नहीं, थोड़े से स्तनपान से तृप्ति नहीं, और चाहिए और चाहिए। भगवान का ये मनोभाव था, और चाहिए। इसलिए भगवान माता यशोदा के विषय में, ऐसे भक्तों के विषय में भगवान अपनी तृप्ति नहीं दिखाते कि अब मैं तृप्त हो गया, अब जाओ जो करना है करो। भगवान हर समय अतृप्त रहते हैं। जैसे भौतिक संसार में लोग अतृप्त रहते हैं, वैसे ही भगवान आध्यात्मिक संसार में अतृप्त रहते हैं, परंतु कारण विपरीत है दोनों के अतृप्त रहने का। तो भगवान यहां पर सोच रहे हैं, बहुत ही सुंदर मनोभाव है भगवान का। भगवान सोच रहे हैं, अब माता यशोदा को कितना समय लगता, अंदर गई है दूध को संभाल कर, कितना समय लगेगा बाहर आने के लिए? ना, भगवान व्याकुल होए और भगवान सोच रहे हैं कि अरे मैं क्षीर सागर छोड़कर आया, पूरे दूध का समुद्र, वो दूध का समुद्र छोड़कर मैं आया और ये भाग रही है एक दो किलो दूध के पीछे। इतना बड़ा क्षीर सागर मैं छोड़कर आया हूं इधर ब्रज गोकुल में और ये एक दो किलो दूध के पीछे भाग रही। माता यशोदा नहीं जानती थी कि ये क्षीर सागर वगैरह छोड़ छाड़ कर आए हैं यहां पर, वो तो केवल बालक मेरा है, दूध पिलाना है एक दो किलो जो कुछ है। परंतु भगवान ये सोच रहे थे कि सब कुछ मैं छोड़कर आया, विशेष रूप से दूध का सागर वो मैं छोड़कर आया और इनका दूध पीने के लिए, और ये एक दो किलो दूध को बचाने के पीछे भाग रहे। ये भगवान का मनोभाव था। परंतु यशोदा माई क्या सोच रही थी? यशोदा माई यही सोच रही थी कि ये जो दूध है ये भगवान की सेवा में उपयुक्त होने वाला है, इसीलिए भगवान का तदीय है। भगवान की सेवा में जो कुछ उपयुक्त होता है वो भगवान का तदीय कहलाया जाता है। और भगवान शिवजी ने भगवान के तदीय के विषय में बहुत कुछ कहा है। पार्वती ने एक बार पूछा कि सभी लोग आपकी आराधना करते हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, शिवरात्रि होती है और बम बम भोलेनाथ और आपका गुणगान होता है, तो कौन है परम, कौन है बताइए? और आपको मैं हर समय देखती हूं, लोग ओम नमः शिवाय कहते रहते हैं और आप हर समय और किसी ध्यान में लगे रहते हैं, तो कौन परम है बताइए? तो ये पद्म पुराण में भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, आराधना नाम सर्वेशम विष्णुराराधनम परम तस्मात परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। यहां पर वो कह रहे हैं, शिव जी जो परम वैष्णव है वो बता रहे हैं, आराधना नाम सर्वेशम, सभी आराधनाओं में सर्वोच्च आराधना है विष्णुर आराधनम परम, सभी आराधनाओं में सर्वोच्च आराधना होती है भगवान श्री विष्णु की। तो माता यशोदा कही, अरे वाह, भगवान विष्णु की आराधना सबसे सर्वोच्च है। परंतु भगवान शिवजी ने कहा, नहीं, उनसे भी ऊपर है, तदीयानाम समर्चनम तस्मात परतरम देवी, उनसे भी ऊपर है उनके भक्तों की आराधना, उनके तदीय, तदीयानाम समर्चनम। और भगवान के तदीय के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। जैसे श्री चैतन्य चरितामृत में ये प्रसंग है मध्य लीला में, महाराज प्रताप रुद्र जो कि केवल राजा नहीं बल्कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त, और इतनी लालसा इतनी आतुरता उनके अंदर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने की कि रामानंद राय सार्वभौम भट्टाचार्य इनसे इतना कुछ सुना चैतन्य महाप्रभु के विषय में, दर्शन भी किया, परंतु चैतन्य महाप्रभु उन्होंने कह दिया कि मैं किसी राजा से नहीं मिल सकता, मैं एक सन्यासी हूं और सन्यासी का धर्म है कि ये जो राज कारबार संभालने वाले लोग हैं इनसे कोई मिलना नहीं। तो सभी भक्त इतने व्याकुल हो गए कि अरे भाई ये कोई साधारण राजा नहीं है, ये आपके अनन्य भक्त हैं, हम सब अपनी भक्ति यदि इकट्ठा कर रख दें तो महाराज प्रताप रुद्र की भक्ति हमारी भक्ति से कई गुना ज्यादा। तो सभी याचना कर रहे हैं, तो नित्यानंद प्रभु एक युक्ति निकालते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है आप मिलिए मत, आप अपना तदीय दे दीजिए, अपना बहिर्वस्त्र दे दीजिए, वो केवल महाराज प्रताप रुद्र उसमें ही संतुष्ट हो जाएंगे। तो उनका बहिर्वस्त्र चैतन्य महाप्रभु सोचे, हालांकि चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि महाराज प्रताप रुद्र बहुत बड़े भक्त हैं, तो चैतन्य महाप्रभु केवल उनकी भक्ति को और बढ़ाकर दिखाना चाहते थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचकर फिर अपना बहिर्वस्त्र महाराज प्रताप रुद्र के लिए निकालकर दे दिया। और जब महाराज प्रताप रुद्र को चैतन्य महाप्रभु का ये बहिर्वस्त्र मिला, वस्त्र पाना राजर हैल आनंदित मन, प्रभु रूप करी करे वस्त्रेर पूजन। जैसे कि हम भगवान के अर्च विग्रह के ऊपर वस्त्र चढ़ाते हैं और भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करते हैं, परंतु महाराज प्रताप रुद्र के विषय में कहा गया है वस्त्र पाना राजा अरहैल आनंदित मन, इतने आनंदित वो हो गए जब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का बहिर्वस्त्र देखा देखने मात्र से, और जब ये बताया गया कि ये आपके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, तो वो बहिर्वस्त्र प्राप्त करने के पश्चात प्रभु रूप करी करे वस्त्रेर पूजन, वो उस वस्त्र की पूजा रोज करने लगे, उस वस्त्र की आरती उतारने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि भगवान का ये तदीय है और भगवान से अभिन्न है। श्रील प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को की रथ यात्रा शुरू होने वाली थी और अब केवल 2-3 दिन बाकी रह गए थे, रथ बन रहा था, जयानंद प्रभु रथ बना रहे थे, तो रथ बन रहा था, श्रील प्रभुपाद जी देखने आए और वहां पर बारिश जैसी हुई थी और थोड़ा सा कीचड़ भी था, तो श्रील प्रभुपाद जी जैसे ही वहां पर पहुंचे रथ को देखा, नीचे कुछ नहीं, पूरा दंडवत रथ को दिया श्रील प्रभुपाद जी ने, और सभी भक्त वहां पर वो देखे, अरे रथ के ऊपर भगवान तो है नहीं, अभी तो रथ यात्रा को 2 दिन बाकी हैं, अभी तो रथ पूरा बना भी नहीं और नीचे कीचड़ और श्रील प्रभुपाद जी पूरा दंडवत। कई बार हम दंडवत जब करने जाते हैं तो नीचे देख लेते हैं सब साफ सुथरा है कि नहीं, कई बार बारिश के मौसम में यदि कोई भक्त बहुत समय बाद मिले और ऐसी जगह पर मिल जाए जहां पर नीचे थोड़ा कीचड़ हो गंदगी हो, प्रभु थोड़ा अंदर आइए ना, आप इतने दिनों बाद आए, मंदिर में आइए, थोड़ा मंदिर में दर्शन, भगवान का दर्शन पहले, खींच के मंदिर में लाते, अरे प्रभु वांछा कल्प तरुभ्यश्च, फिर दंडवत पे दंडवत, मंदिर तो बहुत साफ है। परंतु श्रील प्रभुपाद जी बाहर उस कीचड़ में भी उन्होंने पूरा दंडवत किया, क्या देखते हुए, जब भक्तों ने पूछा तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये रथ तदीय है श्री जगन्नाथ जी का, क्योंकि ये तदीय है श्री जगन्नाथ जी का इसलिए तदीय को भी भगवान के ही समान आदर देना चाहिए। और भगवान के सबसे निकटतम तदीय कौन है? भगवान के भक्त। भगवान के भक्तों को भगवान के सबसे निकटतम तदीय कहा गया है, इसीलिए वो सबसे आदरणीय हैं। क्योंकि एक कथा है कि भगवान नारायण नारद मुनि से पूछ रहे थे एक दिन। उन्होंने पूछा नारद मुनि से, नारद मुनि बताओ कि इस पूरी सृष्टि में सबसे बड़ा कौन है? तो नारद मुनि सोचे, उन्होंने कहा कि ये पृथ्वी सबसे बड़ी है, इतनी विशाल है ये पृथ्वी। तो भगवान ने कहा, परंतु पृथ्वी में 75% तो समुद्र है, पानी है, जल है। तो नारद मुनि सोचने लगे, हां वो भी सही बात है, तो पृथ्वी से बड़ा जल। परंतु फिर नारायण कहते हैं नारद मुनि से, परंतु अगस्त्य मुनि ने सारे समुद्र पी लिए थे एक दिन। ये जितने भी सरोवर, जल, पानी जितना भी था, 75%, ये पूरा अगस्त्य मुनि ने पी लिया। तो नारद मुनि सोचने लगे, तो अगस्त्य मुनि बड़े हुए फिर। तो फिर भगवान नारायण कहते, परंतु नारद, अगस्त्य मुनि तो केवल एक नक्षत्र, एक तारा है परव्योम में, तो परव्योम बड़ा हुआ। अब नारद मुनि सोच रहे हैं कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। हां भाई, परव्योम बड़ा हुआ। तो भगवान कहते हैं, परंतु मैं जब वामन रूप में आया था तो मैंने अपने दो पग में सारा परव्योम नाप लिया था। तो नारद मुनि कहते हैं, हां आपके चरण ही तो सबसे बड़े हैं ठाकुर। आपके चरण सबसे बड़े। परंतु भगवान ने कहा, परंतु मेरे चरण को तुमने अपने हृदय में बांध के रखा है। तो नारद मुनि कहे, फिर मैं सबसे बड़ा? नहीं नहीं। तो नारद मुनि समझ गए, अरे अरे अरे, ये गलती हो गई, पकड़ लिया नारायण ने मुझे। तो भगवान श्री नारायण नारद मुनि का गुणगान करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि पृथ्वी सबसे बड़ी, पृथ्वी में जल सबसे अधिक, अगस्त्य मुनि ने वो भी पी लिया, वो एक नक्षत्र के रूप में परव्योम में, जिसको वामन देव ने अपने दो पग में नाप लिया, उनके पग सबसे बड़े। परंतु नारद मुनि जैसे भक्त जो हैं, उन्होंने अपने हृदय में भगवान के चरणों को बांध रखा है, इसलिए जो भक्त होते हैं वो सबसे बड़े। बोलो श्री वैष्णव ठाकुर की। तो इसीलिए यहां पर यशोदा माई यही सोच रही हैं कि भगवान की सेवा तो होती रहेगी, परंतु ये तदीय है भगवान का, ये दूध, और मुझे तदीय की देखभाल बहुत ही अच्छी तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि ये तदीय भगवान की सेवा में लगने वाला है। इसीलिए हमें भक्तों के समुदाय में हमारी धारणा क्या होनी चाहिए कि ये सारे भक्त जो हैं भगवान के तदीय हैं। जो भी इस मंदिर में आ रहा है वो भगवान का तदीय है, और जो मंदिर में नहीं भी आ रहा वो अज्ञान में रहेगा, परंतु फिर भी भगवान का तदीय है। और हर एक व्यक्ति को उसी प्रकार से आदर सम्मान देना चाहिए। इसीलिए जब हम भक्तों से मिलते हैं तो भक्तों को अपना दंडवत देते हैं। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। केवल ये अपने जिह्वा से बोलना नहीं है केवल हमें, बल्कि हृदय से ये समझना चाहिए कि ये जो भक्त है जिनको मैं अपना दंडवत दे रहा हूं, ये भक्त भगवान के तदीय हैं। जैसे माता यशोदा भगवान को छोड़कर भगवान के तदीय को पकड़ने गई, उसी प्रकार से हमें भगवान से ज्यादा भगवान के भक्तों का संग लेकर उनका यदि हम आदर करेंगे तो भगवान उसी में अधिक प्रसन्न होंगे, और यही माता यशोदा अपने उदाहरण से दर्शा रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण अब अतृप्त रहे और अतृप्त अवस्था में भगवान ने आगे क्या किया, इसकी चर्चा हम करेंगे। मितेश प्रभु फिर से कहते हैं कल, तो कल रविवार का दिवस है और कल भगवान अपने लीला के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग को आप सबके लिए बचा कर रखे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप आइए, ताकि अब भगवान क्या करने जाने वाले हैं उसे यदि आपको देखना है, उसे यदि आपको सुनना है, यदि उसका आस्वादन करना है, तो ठीक आज की तरह कल ठीक इसी जगह पर शाम 7:30 बजे आप लोग उपस्थित हो जाएं और भगवान श्री दामोदर क्या अब आगे गुल खिला रहे हैं वो दिखाएंगे। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, शिला प्रभुपाद की, श्री वैष्णव ठाकुर की, निताई गौर प्रेमानंदी। बहुत बहुत धन्यवाद।